ये आकाशवाणी है, अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष जारी रहने के बीच इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसने आज तड़के ईरान से दागी गई मिसाइल को रोकने के कुछ ही समय बाद ईरान पर नए हवाई हमले किए। इसराइली सेना ने कहा कि उसने ईरान के करमनशाह प्रांत में सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और शस्त्रागार पर हमला किया। ईरान ने भी इसराइल में मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बात कही है, जिनमें कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। दूसरी ओर ईरान की संसद ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग मार्गों में से एक होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस बारे में अंतिम निर्णय ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। इस बीच अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर जल डमरू मध्य को खुला रखने के लिए संभावित नौसैनिक टकराव की तैयारी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंध में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए मॉस्को पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति की अपील की, जिसमें संकट को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया। चार राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव की मतगणना आज की गई। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने नीलांबुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है। कांग्रेस के आरेदान शौकत ने 77,000 वोटों के साथ ये जीत दर्ज की। गुजरात में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने जीत हासिल की, जबकि कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार चावड़ा विजयी रहे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने कालीगंज सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के आशीष घोष को 50,049 मतों से हराया। पंजाब में लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अगस्त 2023 से जुलाई 2024 की अवधि के बीच दिए गए भाषण शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पुस्तक लोगों को विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी।
मैंने पुस्तक को सभी नजर से देखा और मैं ये कह सकता हूँ कि इस पुस्तक में संकलित सभी लेख 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के साधन है, यानी विकसित भारत साध्य है और यह किताब उसका साधन है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुस्तक में सभ्यता से लेकर संस्कृति और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक के विषय शामिल हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कल्याणकारी विचारों से अवगत कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसायटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारामन, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। राष्ट्र आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे।
तुष्टीकरण की नीति के कारण जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसका विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। एक नियम रहेगा, एक कानून रहेगा और इस बात को लेते हुए उन्होंने उसको अस्वीकार किया। श्रीनगर के जेल में 23 जून आज के दिन 72 साल पहले उनका रहस्यमय तरीके से निधन हो गया।
ईरान में परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हमले के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में आज शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतें 2% से अधिक बढ़कर इस वर्ष जनवरी के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।